ओम शांति। अभी इतना सुंदर क्लास हम सभी ने सुना दीदी का, है ना? बहुत बातें स्पष्ट हुई, बाबा के साथ संबंध कैसे निभाए, कर्म में उसको कैसा उपयोग करें। तो अभी का सेशन है, मैं क्लास में ही कराने वाली हूं, ठीक है? ये चिटचैट रहेगा और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं मिल करके कि परमात्मा प्यार क्या चीज है और उसकी आवश्यकता क्या है। वैसे तो टॉपिक है परमात्मा प्यार की संजीवनी। संजीवनी कब यूज करते हैं? जब कोई मूर्छित हो जाते हैं ना, तो संजीवनी बूटी ऐसा पावरफुल बूटी है जो मूर्छित को भी सुरजित कर देता है, जो मरते मरते व्यक्ति बच जाता है, है ना? तो परमात्मा प्यार भी ऐसे संजीवनी है जो व्यक्ति अपने जीवन में हताश निराश हो चुका है, सब कुछ सभी बातों से वो एकदम होप खो दिया है, तब बाबा का जो प्यार है वो संजीवनी का काम करता है, है ना? तो उस बात को, परमात्मा प्यार को समझने के लिए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं प्यार क्या चीज है, है ना? तो दुनिया में, कलयुगी दुनिया में प्यार की परिभाषा कुछ अलग ही हो गया है। शारीरिक प्यार विकार का रूप, जब भी प्यार शब्द आता है तो लोग विकार के बारे में ही सोचते हैं, वो शरीर का प्यार हो गया है, वो कलयुगी तमो प्रधान प्यार, जिसमें लोग कहते हैं आई फॉल इन लव, है ना? प्यार में गिरते हैं कलयुगी दुनिया में, लेकिन परमात्मा प्यार में वी रेज इन लव, वी राइज इन लव, ऊपर उड़ते हैं। हम गिरते नहीं है परमात्मा प्यार में, लेकिन लोगों के, मनुष्य आत्माओं के प्यार में हम गिरते हैं या नीचे चले जाते हैं। जो तमोप्रधान प्यार है उसमें दुख समाया हुआ है, वह दुख ही दुख है, इसलिए बाबा कहते हैं उसमें आदि मध्य अंत तीनों काल में वो दुख ही दुख है। क्यों दुख है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस हैं, मुझे चाहिए, आशाएं तृष्णाएं बहुत सारी बातें उसमें समाया हुआ होता है। जो एक्सपेक्टेशंस है वो नहीं मिलता है तो फिर दुख समाया हुआ होता है। ये कलयुगी प्यार है, तमोप्रधान प्यार है। पूरे चक्र में अगर देखते हैं तो अगर उल्टे चक्र में चलते हैं हम, अभी कलयुगी प्यार एकदम तमोप्रधान प्यार, फिर थोड़ा सा ऊपर उड़ते हैं द्वापर युग में। द्वापर युग में प्यार कैसा रहेगा? द्वापर युग में प्यार कैसा रहेगा? वहां रजो प्रधान है। कलयुग में पूरा तमो प्रधान, द्वापर युग में रजो प्रधान। रजो प्रधान प्यार क्या है? वहां इंटेलेक्चुअल प्यार है, माना बुद्धि। जैसे कलयुगी दुनिया में शरीरों का मिलन वो तमो प्रधान प्यार, द्वापर युग में रजो प्रधान प्यार हुआ इंटेलेक्चुअल। हमारी सोच एक दूसरे के साथ मिल रहा है, एक दूसरे के साथ जो वो सोच रहे हैं हम भी वही सोच, वेवलेंथ जो हम आजकल देखे थे एक ही वेवलेंथ है हमारा, सोच एक जैसा है, तो वो इंटेलेक्चुअल लेवल में जब हमारा एक दूसरे के साथ मिलन होता है तो वो इंटेलेक्चुअल लेवल में वो प्यार होता है। तो समझ, एक दूसरे को हम अच्छी तरह समझ पाते हैं, तो इसीलिए वहां उस रीति से प्यार होगा। लेकिन वहां भी अनबन रहेगा, वहां भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है, वहां भी अनबन है, क्योंकि वहां पूरी तरह प्यार प्योर नहीं है, सतो प्रधान नहीं है, वहां कॉन्फ्लिक्ट्स है। रिलेशनशिप में अनबन है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, मनमुटाव है, ये सभी बातें तजो प्रधान है। लेकिन जब सतो प्रधान प्यार होगा देवी देवताओं में, सतयुग में हमारा प्यार एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा? सात्विक सतो प्रधान। लेकिन कैसे पता चलेगा यह सात्विक सतो प्रधान प्यार है? कैसे पता चलेगा? आत्मिक प्यार होगा, वह देह भान नहीं रहेगा, आत्मिक प्यार रहेगा। लेकिन आत्मिक प्यार में भी डिफरेंस तो रहेगा कि पति पत्नी का प्यार अलग है, बच्चों के साथ प्यार अलग है, तो सभी संसार के साथ एक जैसा प्यार तो हम नहीं करेंगे ना। अलग अलग संबंधों का अलग अलग प्यार होगा, है कि नहीं? पूरे सभी आपके परिवार में अगर 20-25 लोग हैं, उन सभी को एक जैसा प्यार करेंगे क्या? नहीं। वहां भी डिफरेंस रहेगा ना, कि संबंध के ऊपर निर्भर करता है हमारे पर प्यार का फ्लेवर क्या रहेगा। लेकिन फिर भी वहां आत्मिक प्यार है, आत्मा का प्यार है। आत्मिक प्यार माना वहां भावनाओं का मिलन है, एक दूसरों की भावनाएं हम समझ रहे हैं। तो वो कहने किसे ऐसा होता है ना, अगर मेरा किसी के साथ इतना गहरा संबंध है तो वहां कहने से पहले समझ गए, उनके मूड से ही पता चल जाता है, चेहरे से ही पता चल जाता है आज ये व्यक्ति किस मूड में है, उसको क्या चाहिए, वो वाइब्रेशन से ही पता चल जाता है कि नहीं? तो वो सतो प्रधान प्यार है। भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ी हुई है, तो एक जैसे बहुत ही इजी, कोई वहां कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई अनबन नहीं है, बहुत ही संबंध बहुत ही स्मूथली सेल हो रहा है, बहुत स्मूथली सब कुछ चल रहा है। अगर थोड़ा बहुत व्यक्ति थोड़ा मूड, वहां सत्युग में तो मूड खराब नहीं होगा, लेकिन थोड़ा भी डाउन भी होगा तो, लेकिन एक दूसरे को संभाल लेते हैं तो वहां कुछ ऐसे अनबन नहीं रहेगा, है ना? तो आपने शंकर पार्वती का तांडव देखा होगा। वो तांडव नृत्य में क्या होता है कि शंकर पार्वती की जो तालमेल है ना, ऐसा बैठा हुआ होता है, ऐसा उनका डांस रहेगा कि बहुत ही स्मूथली सब कुछ चल रहा है, लेकिन वहां कोई भी एक दूसरे के हाथ पैर का टकराव नहीं हो रहा है, लेकिन इतना फास्ट भी हो रहा है, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर के ऐसा कुछ मजा आ जाता है देखने का। तो ऐसा संबंध हमारा सतयुग में होगा, इतना स्मूथली सब कुछ चल रहा है, लेकिन कहीं भी कुछ टकराव, कॉन्फ्लिक्ट या अनबन कुछ भी नहीं है। एक दूसरे की भावनाओं को हम अच्छी तरह समझ पा रहे हैं, फीलिंग्स बोलने से पहले वाइब्रेशन से हम एक दूसरे को समझ रहे हैं। तो अभी हमें वहां तक ले जाना है, अपना जो संस्कार है, प्यार का जो फ्लेयर है, तो सतो प्रधान तक ले जाना है एक दूसरे के साथ, जो इंसान मनुष्य आत्माओं का। तो वहां तक अगर ले जाना है, अभी संगम युग में हमें कुछ काम करना पड़ेगा, है ना? तो सत्योग में से फिर उसके पहले हम कहां जाते हैं? परमधाम में। तो परमधाम में प्यार कैसा रहेगा? परमधाम में प्यार की अनुभूति होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, नहीं होगी, एकदम साइलेंस है वो, एकदम साइलेंस में। तो वो थोड़ा सा रुका, मतलब रुकापन रहता है ना, ड्राइनेस है। लवली अवस्था में होंगे वहां। जैसे बहुत लोगों का आप लोगों ने अनुभव सुना होगा, नियर डेथ एक्सपीरियंस, मरते मरते बचे हुए हैं, जो ऑलमोस्ट वो चले गए थे लेकिन किसी कारणवश वो वापस आ गए। वापस आने के बाद वो अपना अनुभव सुना रहे हैं। उन्होंने क्या, मेजॉरिटी लोगों ने ये अनुभव सुनाया है कि ये बहुत टनल से हम गुजर रहे हैं, आत्मा जैसे शरीर छोड़ती है, टनल से गुजर रहे हैं और टनल के एंड में एक ऐसी रोशनी है। केवल रोशनी नहीं, लेकिन रोशनी से ऐसा प्यार, ऐसा मतलब निस्वार्थ प्रेम का वाइब्रेशंस ऐसे आ रहा है कि जैसे आत्मा तृप्त हो रही है, मतलब परमात्मा प्यार ऐसा जड़ी बूटी है, ऐसा संजीवनी है जो बहुत दुख दर्द सब कुछ हील हो जाता है, है ना? तो परम धाम में ऐसा सुखद अनुभव हम सभी आत्माएं करते हैं। वो कोई बैरियर्स ही नहीं है ना, वहां देह भान का बैरियर नहीं है, वहां कोई मतलब पिछले जन्मों की याद का बैरियर नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई भी याद नहीं है ना, कुछ भी बातें याद नहीं, क्या पाप किया, क्या पुण्य किया है, तो कुछ भी नहीं है। केवल हम पूरी तरह आत्मा अभिमानी स्थिति में हैं, तो परमात्मा का पूरी तरह हम प्यार की अनुभूति में वहां मग्न है। तो वो अनुभव हमें संगम युग में शरीर में रहते हुए वो अनुभव करना है, है ना? वो तो मुक्त स्थिति है, मुक्ति का अनुभव वहां है परमधाम में, लेकिन संगम युग में जीवन मुक्ति का अनुभव। जीवन मुक्ति का अनुभव माना इस शरीर में रहते हुए पूरी तरह मुक्ति का अनुभव। कोई भी खींचाव नहीं है, कोई भी लगाव झुकाव नहीं है, ऐसा मुक्त अनुभव, आत्मिक स्थिति इतना पावरफुल हम अनुभव करें, तो ताकि फिर मैग्नेट, ऐसा शुद्ध आत्मिक स्थिति में जब हम शुरू स्थित हो जाते हैं तो मैग्नेट ऑटोमेटिकली पुल कर देता है। बाबा शिव बाबा का प्यार हमारा इतना मैग्नेट है तो वो खींच लेता है। तो वो स्थिति हमारा यहां बनाने की जरूरत है, है ना? तो वो प्यार अनुभव करने की जरूरत क्या है? परमात्मा प्यार अनुभव करने की क्या जरूरत है? जैसे इस जीवन में ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन के बिना कितना मिनट हम रह सकते हैं? डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स यहां बैठे हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर्स? ऑक्सीजन के बिना कितने मिनट हम रह सकते हैं? 3 मिनट, 5 मिनट, उतना भी नहीं, बहुत कम, है ना? तो ऑक्सीजन के बिना ये शरीर में ज्यादा समय नहीं रह सकते। प्यार भी, परमात्मा प्यार भी हमारे लिए ऑक्सीजन है। परमात्मा प्यार हम अनुभव नहीं कर सकते जब, तो फिर इंसान के प्रति हम प्यार एक्सपेक्ट करते हैं कि प्यार, वो जो प्यार है इंसान के का भी जो प्यार है वो भी लोगों के लिए ऑक्सीजन का काम करता है, लेकिन हमारा जो प्यार है बाबा का प्यार, वो बहुत श्रेष्ठ प्यार है। तो इसीलिए प्यार के बिना जीवन जीवन नहीं है, इसीलिए परमात्मा प्यार हमारा ऑक्सीजन है, है ना? परमात्मा प्यार दूसरी बात क्यों अनुभव करना चाहते हैं? सुरक्षित महसूस करते हैं। ओवरऑल प्यार तो सुरक्षा, जैसे परिवार का प्यार मिलता है सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन परमात्मा प्यार से भी हम पूरी तरह सुरक्षित महसूस करते हैं। कोई मेरे साथ साथी हो ना हो, बाबा हमारा साथी है, परमात्मा का प्यार पूरी तरह हम अनुभव कर रहे हैं तो फिर सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसा है कि नहीं है? है कि नहीं है? सुरक्षित महसूस करते हैं ना। कुछ दिन पहले कोई ऐसे बहन आई और वो थोड़ा सा रोने का चेहरा था उनका, तो कहते हैं कि ऐसे ऐसे परिस्थिति हुई, मेरा इतना समस्या, इतने सारे प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में है, तो पता है कि जितना मैंने लोगों को मदद की थी, मेरे परिवार वाले, मेरे सगे जो है, उन सभी ने हाथ उठाया, किसी ने भी मदद नहीं किया। मेरा तो एक ही बाबा है, बाबा ही मददगार है, बाबा ही मेरा अपना सच्चा साथी है, वो रोते हुए बोल रही है। मेरे को प्रश्न उठा, जब बाबा मेरा साथी है तो हम क्यों रो रहे हैं? ये सोचने की बात है कि हम क्यों रो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस है ना, मनुष्य आत्माएं मुझे मदद करे, वो नहीं किया है तो इसीलिए मेरी स्थिति ऐसी है, और रोते रोते बोल रहे हैं कि मेरा कोई साथी नहीं है, केवल एक भगवान मेरा साथी है, एक भगवान मेरा सहारा है। ये हम रोते रोते बोलने की जरूरत है, या फिर हंसते हंसते या हुज्जत से, अथॉरिटी से बोले, या फिर हम नशे से बोले, मेरा साथी भगवान है, मेरा सहारा भगवान है। नशे से बोलना चाहिए या रोते रोते बोलना चाहिए? आज के बाद कभी भी ये नहीं सोचना कि इसने मदद नहीं की, इसने साथ नहीं दिया, इनको इतना मैंने मदद किया था फिर भी उन्होंने मदद नहीं की। नहीं, मेरा साथी बाबा है, मेरा सहारा बाबा है, एक बाबा अगर मेरे साथ है दुनिया को जीत लेंगे। ऐसी बात है? पांच पांडवों के पास क्या था? केवल एक परमात्मा थे बस, और कौरवों के तरफ अक्षौणी सेना थी, और फिर भी वो लोग जीत गए। तो ये हमारे अंदर नशा होना चाहिए, मेरा साथी जब भगवान है तो कोई साथ दे या ना दे, मैं दुनिया को जीत के दिखाऊंगी। ये नशा हमारे अंदर होगा तो हम उस नशे के साथ जिएंगे तो दुनिया को हम जीत सकते। कोई हमको कोई और साथी की जरूरत है ही नहीं, लेकिन वो अनुभव करें हम परमात्मा के प्यार का, हम इतना गहराई से अनुभव जब हम करेंगे तब वो नशे से हम बोल सकते हैं परमात्मा मेरा साथी है ना। और तीसरी बात, परमात्मा जब हमारा साथी है तो हम बहुत सौकार हैं, बहुत ही अमीर हैं, हम अमीर महसूस करते हैं, है ना। कुछ हो या ना हो, खाने के लिए दो वक्त की रोटी है, लेकिन फिर भी हम संतुष्टता महसूस करते हैं, अमीर सब। इसलिए दादी जानकी क्या बोलते थे कि जेब खाली फकीर है लेकिन फिर भी हम अमीर है ना। तो वो एक परमात्मा का प्यार जब हम अनुभव करते हैं ना, तो एकदम पूरी तरह हम अमीर महसूस करते हैं, भरपूर अनुभव करते हैं परमात्मा प्यार के अंदर। चौथी बात कि डिसिप्लिन में रहने की ताकत हमारे अंदर आ जाता है, अनुशासित रहने की शक्ति हमारे अंदर आ जाता है। और पांचवी बात, परमात्मा का जो प्यार है वो हीलिंग पावर है। जो द्वापर युग से लेकर के अभी तक जो हमने दुख दर्द महसूस किया है, वो सब कुछ हील करने का एक ही उपाय है, बाबा का प्यार। क्योंकि द्वापर युग से कहीं ना कहीं हमने दुख उठाया है, अलग अलग संबंधों से धोखा खाया है, दुख उठाया है या किसने दर्द दिया हुआ है। तो वो सारी बातें जो हमने अपने संस्कारों में समा करके चल रहे हैं, वो हील कब होगा? हील कब होगा? इंसानों से हील नहीं होगा ना, तो परमात्मा प्यार से ही वो सब कुछ हील होगा। अभी अपने आप को हील करना है परमा शिव बाबा के प्यार से। तो बाबा तो प्यार का सागर है, वो देने में तो कोई कमी नहीं है। बाबा हमेशा हर एक आत्मा को एक जैसे प्यार दे रहा है, लेकिन लेने में कहीं ना कहीं अंतर है ना? वो अंतर क्यों आ रहा है? जब हम कहते हैं ना, बाबा तो कहते हैं मैं तो प्यार का सागर हूं, हर आत्मा जो मणके माला के लास्ट मणके को भी मैं उतना ही प्यार करता हूं। एक जैसे प्यार बाबा सबको दे रहे हैं, लेकिन अंतर क्यों हो रहा है? अंतर क्यों कहां है? जब हम कहते हैं ना, बाबा हम भी आपको प्यार करते हैं, उसकी परिभाषा क्या है? बाबा तो कहते हैं बच्चे मैं आपको प्यार करता हूं, लेकिन हम भी कहते हैं बाबा हम भी आपको प्यार करते हैं, बाबा आई लव यू। जब ये शब्द यूज करते हैं तो उसका डेफिनेशन क्या है? उसका अर्थ क्या है? कौन कौन सी क्वालिटीज हमारे अंदर होना चाहिए ताकि फिर वो 100% जिस रीति से बाबा हमें प्यार कर रहे हैं, 100% मैं भी बाबा को प्यार करूं। हमारे अंदर परसेंटेज है ना, हम भी कहते हैं बाबा आई लव यू, लेकिन उसमें परसेंटेज है। वो परसेंटेज 100% आ जाए उसके लिए क्या करना है? संबंधों को लेकर के चलते इजी, जो हम संबंधों को लेकर के चलते क्या क्या करना है वो सहज हो जाएगा हमें याद करना, है ना? तो संबंधों के आधार से ही हमें प्यार की अनुभूति होती है, संबंधों के बिना प्यार की अनुभूति नहीं हो सकता। इसलिए सर्व संबंधों की अनुभूति बाबा के साथ करने की जरूरत है, ठीक है? तो पिता और संतान के संबंध में प्यार कब बढ़ता है? बाबा हमारा पिता है, पिता और संतान, उसमें प्यार कब बढ़ेगा? आज्ञाकारी, वो बाद में आएंगे, एक एक गुण लेंगे। पिता और संतान के संबंध में संतान को आज्ञाकारी, जितना आज्ञाकारी होंगे उतना पिता के लिए, पिता के साथ प्यार बढ़ेगा। तो इसलिए या वो फिर यहां लागू करेंगे, जितना हम बाबा के आज्ञाओं पर चलते हैं, बाबा के नजदीक हम जा सकते हैं, बाबा का प्यार हम अनुभव कर सकते हैं। मां के संबंध में, मां को कौन सा बच्चा बहुत प्यारा होता है? माताएं बताएं, अगर आपके 2-3 बच्चे हैं, 2-3 बच्चों में से कौन सा प्यारा बच्चा होगा आपको? केयर करने वाले, जो माँ का केयर करे, प्यार अफेक्शन माना, केयर माना उसके देखभाल करे, जो उनको मदद करे सब बातों में, तो केयर बहुत ही आवश्यक है। तो बाबा को तो यहां केयर की जरूरत नहीं है, बाबा को केयर की, वो तो केयर गिवर है, वो तो देने वाला है, तो बाबा को हम केयर देने के वो एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे, राइट? तो हम केयर किसको दें? बाबा के यज्ञ, बाबा के बच्चों का जब हम केयर रखते हैं, बाबा के यज्ञ को, जितना हम मददगार बनते हैं यज्ञ में, जितना मददगार बनते हैं अलग अलग रीति से, तो फिर हम शिव बाबा, शिव माँ के साथ हमारा संबंध गहरा होता जाएगा। एक क्लास में दादी जानकी ने बहुत अच्छी बात कही थी, अगर आपको योग में गहराई का अनुभव करना है पहले सहयोगी बनना जरूरी है। सहयोगी बनते बनते आप योगी बन जाएंगे। माना कर्मणा सेवा वाचा सेवा, हड्डी हड्डी, जब योग नहीं लगता है कोई बात नहीं, उसमें मेहनत नहीं करिए, हड्डी हड्डी लगाना शुरू करें, कर्मणा सेवा, शरीर को लगाना शुरू करें पहले, फिर वाचा को। जैसे जैसे हम अलग अलग तरीके से यज्ञ सेवा करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हमारा योग भी लगना शुरू हो जाता है। इसलिए केयर, माँ के संबंध में केयर। और तीसरा संबंध टीचर। टीचर का कौन सा फेवरेट स्टूडेंट होता है? जो पंचुअल होता है, जो पढ़ने में होशियार होता है, और ज्ञान मतलब उसकी गहराई में जाता है, मतलब उसमें इंटरेस्ट है, ज्ञान में जिसको इंटरेस्ट है वो फेवरेट होता है ना। तो यहां भी बाबा कहते हैं मुरलीधर से प्यार माना मुरली से प्यार, बाबा के ज्ञान से प्यार, बाबा के समझाने से प्यार। ऐसा नहीं कि बाबा से तो प्यार है लेकिन बाबा जो समझानी दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, उसको तो हम मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन बाबा से प्यार ऐसी बात नहीं है, है ना। मुरलीधर से प्यार माना बाबा की मुरली से भी अटूट प्यार, ज्ञान से प्यार, बाबा के ज्ञान से प्यार, है ना। ज्ञानी तो आत्मा, बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्माओं से मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत पसंद है, तो ज्ञान से प्यार। और चौथा संबंध सदगुरु। सदगुरु को, गुरु को कौन सा शिष्य बहुत पसंद है? गुरु से क्या मिलता है हमें? श्रीमत मिलता है। कौन सा चेला बहुत फॉलोअर बहुत पसंद है? जो श्रीमत पर चलता है। एक है केवल ज्ञान सुनना, ज्ञान की गहराई में जाना टीचर, है ना, ज्ञान की गहराई में जाना वो ठीक है, लेकिन धारणा एक बात है, ज्ञान की गहराई में जाना, हर बात को समझना, है ना, केवल थियोरी नहीं, सद्गुरु के संबंध में हर बात धारणा में आए, हमारे कर्मों में आए, हमारे वृत्तियों में आए, वो बात है ना, धारणा, श्रीमत पर चलना, धारणा में वो सब बात आए। तो जो धारणा में है वो जो आत्मा है बाबा को, सद्गुरु बाबा को बहुत पसंद है, जो श्रीमत पर चलता है, जो धारणा युक्त आत्माएं हैं वो सद्गुरु बाबा को बहुत पसंद है। और नेक्स्ट संबंध है फ्रेंड का संबंध। फ्रेंड, कौन सा फ्रेंड बहुत पसंद है आपको? जो अवेलेबल है, राइट बात है, जो अवेलेबल है, और एक दूसरे को समझे, है ना, एक दूसरे के फीलिंग्स को समझे। और दूसरी बात, जो मेरी बात वो किसी को स्प्रेड ना करे। ईमानदारी, ईमानदारी, जो बाबा के साथ अगर वो फ्रेंड है मेरा, मैं तो जो चलो बाबा तो स्प्रेड नहीं करेंगे, लेकिन मेरी ईमानदारी बाबा के साथ, बाबा जो कहे उस अनुसार हम चले। और दूसरी बात ईमानदारी माना, जब भी कुछ बातें कुछ परिस्थितियां आती है, क्या मैं बाबा के साथ उस बात को शेयर करती हूँ, बाबा को बताती हूँ, या फिर ये अंदर से इच्छा होता है कि मैं फोन उठा करके इसको मैं बताऊं, इस व्यक्ति को बताऊं, मैं अपना दिल हल्का करूं। दिल हल्का करने के लिए किसके सामने आप दिल हल्का करते हैं? अपने आप को देखना, है ना, कि जब भी कुछ ऐसे परेशानी आती है,
आपको क्या आप बाबा के साथ शेयर करते हैं या फोन उठा करके दिल हल्का किसी और व्यक्ति के साथ दिल हल्का करते हैं। तो इसलिए ये ईमानदारी, जितना हम बाबा को रखते हैं, बाबा के साथ सब कुछ शेयर करते हैं, तो हमारा प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। बहुत लोगों ने यह अनुभव किया है और अलग अलग लोग अलग अलग रीति से अनुभव करते हैं। मैं रिसेंटली क्या अनुभव कर रही हूं, कई बार ना ब्रह्मा बाबा को इमर्ज करके हम बाबा को बोलते, बाप दादा को बोलते हैं, अलग अलग तरीके से हम अलग। रिसेंटली अभी मम्मा का मास चल रहा है, इस मास से, जून मास से मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, मम्मा को इमर्ज कर रही हूँ। जो भी कुछ ऐसे परेशानी होती है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आता है, कुछ क्योंकि संगठन में कुछ कारोबार चल रहा है तो परेशानियां तो होगी, कुछ समस्याएं तो आती है, तो मैं मम्मा को इमर्ज करती हूँ। मम्मा को इमर्ज कर, मम्मा ये इसने ऐसा बोला, ये हो गया, मतलब बच्चे हो सकते हैं ना, जो भी कंप्लेंट है, जो भी ये बातें हैं, तो मम्मा बाबा के सामने हम दिल खोल करके, बच्चे बन करके हम अपने दिल की बातें कह सकते हैं, वो कोई जज नहीं करते। दूसरे इंसान के सामने मैं कहूं कि मेरा जो भी, हाँ इतने सीनियर बहन होने होकर भी ऐसे बोलती है, ये ऐसे, अभी ये नहीं है, मतलब अपने जजमेंट, वो उस दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। लेकिन मम्मा बाबा कोई भी जज नहीं करेंगे, वो हमारे बाबा हैं, पिता है, फ्रेंड है ना। तो दिल की बात जो भी है खाली करना है बाबा के सामने, आप खाली करो, कोई इंसान के सामने खाली नहीं करना, क्योंकि वो अपनी दृष्टिकोण से आपको देखना शुरू करते हैं, वो जज करना आपको शुरू करते हैं। इसलिए दिल खाली करना है बाबा को, इसमें ईमानदारी, जो भी फीलिंग शेयर करना है बाबा के साथ शेयर करना। और नेक्स्ट संबंध है साजन का संबंध। साजन के संबंध में कौन संबंध कैसा गहरा हो सकता है, साजन सजनी का संबंध, वो तो ईमानदारी है ही, लेकिन उसमें समर्पण भाव एक दूसरे के प्रति है ना, अव्यभिचारी याद बाबा कहते हैं ना, समर्पण भाव, जहां समर्पण भाव है वहां अपना जो संबंध है बहुत ही गहरा हो सकता है। समर्पण भाव, बाबा जो कहे, जैसा कहे, जहां बिठाए, जो खिलाए, वैसे बुद्धि से समर्पित, शरीर से समर्पित तो है ही, लेकिन बुद्धि से जो समर्पित नहीं, मतलब शरीर से समर्पित नहीं, जो घर गृहस्थ में रह रहे हैं वो कैसे समर्पित होंगे, बुद्धि से समर्पित है। तो बाबा जो कहे, जैसे कहे, बाबा जहां, जो भी बुद्धि से बाबा जो चाहता है वैसे हम करते जाए, तो बाबा प्रियतम के प्रति हमारा प्यार बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। और सातवां संबंध, बाबा हमारा संतान, हम उनके माता पिता, उस संबंध में क्या चाहिए, पेरेंट्स अपने बच्चों के प्रति क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या रखते हैं, केयरिंग रहता है और निस्वार्थता रहेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। माता पिता को बच्चों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं, जवाबदारी है उनके पालन पोषण करने के लिए या फिर उनको आगे बढ़ाना, जो भी है ना। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा के प्रति क्या है, बाबा के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यज्ञ रक्षण, यज्ञ के प्रति हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे तरफ से कोई भी बाबा का बदनाम ना हो, यज्ञ के बदनामी ना हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम फील करते हैं तो उस अनुसार हम चलते हैं। तो चलिए, जो फ्रेंडशिप के बारे में मैंने कहा था कि दिल खोल करके बाबा के साथ सब कुछ शेयर करना है, तो अभी हम एक एक्टिविटी करते हैं। हर एक के पास नोटबुक पेन है, नोटबुक पेन है। अगर किसी के पास भी नोटबुक नहीं है, यहाँ पेपर्स रखे हुए हैं, आप पेपर ले सकते हैं। अभी दिल खोल करके जो भी बात है बाबा को, आपको लेटर लिखना है। खाली कर दीजिए मन में, दिल में, जो भी बात है, जो भी बोलना है, कंप्लेन करना है या फिर प्यार जताना है या फिर रूठना है, रूसना है, जो भी बात है, जो भी है बात, अंदर सारा खाली करना। मधुबन से जाने से पहले पूरा आपका दिल प्लेन होना चाहिए, खाली होना चाहिए, बातें नहीं रखना दिल में। आप लिखना शुरू करो, जो भी लिखना। वो लेटर कोई नहीं देखेगा आपका, सिर्फ बाबा देखेगा। और हर एक को लिखना जरूरी है, हर एक को लिखना जरूरी है। हाँ, फ्रेंड के रूप में जो भी दिल खाली करना है। अगर कोई कंप्लेंस नहीं है तो फिर बाबा को शुक्रिया कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं, प्यार जता सकते हैं, आप कितना प्यार करते हैं बाबा से, वो लिख सकते हैं। जो भी बात है सब कुछ खाली कर दीजिए।
दिल की दवा तुम्हें कलम डुबो कर, बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। यादें जिगर की सियाही लेकर, हाले दिल सब सच लिखता हूँ। खत लिखता हूँ, शाम सवेरे याद में तेरे, बीते दिन और बीते रहना, तेरे ख्याल कोई देखे ये मेरे नैना। लगता है बाबा हाथों में तेरे, हाथ सदा दे कर चलता हूँ।
दिल की दवात में कलम डुबो कर,
बाबा तुझे एक खत लिखता।
साथ साथ एक प्रॉमिस भी करना है, बाबा के घर में, मधुबन में कोई भी एक संस्कार जो आज छोड़ना चाहते हैं आप, उस लेटर में लिखेंगे। एक लंबा लिस्ट नहीं लिखना है, एक संस्कार कोई। बाबा को देना चाहते हैं, कोई ऐसे कोई एक कमजोरी। बाबा को लेटर लिखने की आदत आप यहां से पक्का करेंगे। जब भी आपको बाबा से बात करनी है, भले बोल नहीं पा रहे हैं, लिख करके, लिखने की आदत। जितना हम लिखते हैं सब खाली होता है, मन खाली हो जाएगा,
तो इसीलिए लिखने की आदत, बाबा को लेटर लिखने की आदत यहाँ से पक्का करके जाना। रोज लिखे अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट जब मूड खराब है लिख करके पूरा करना है। अभी तो शॉर्ट लेटर लिख दीजिए, लंबा चौड़ा लेटर बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो लेटर आप लिख रहे हैं उसको फाड़ के आप अपने पास रखेंगे, शाम को आपको बताया जाएगा कहाँ डालना है, बाबा को आप अर्पण करेंगे, है ना। अगर आप लेटर पूरा नहीं किए हैं कोई बात नहीं, दोपहर को आपके पास टाइम है, पूरी तरह बाबा को जो बोलना है दिल पूरी तरह खाली करके, और एक प्रॉमिस, एक प्रतिज्ञा, एक संस्कार का त्याग आज जरूर करना है, एक कभी का त्याग आज जरूर करना है, ठीक है। उसको फाड़ के फोल्ड करके रखना, ताकि फिर आज शाम को फिर आपको जगह बताया जाएगा कहाँ डालना है, है ना। अभी दूसरा पेज लेंगे, दूसरा पन्ना। उस पन्ने में क्या लिखना है, अभी बाबा की याद में बैठ जाइए। सभी अपने स्व स्थिति में स्थित हो जाएं। सूक्ष्म शरीर सहित अपने आप को सूक्ष्म वतन में देखें, सूक्ष्म वतन में सामने बाप दादा ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा, और मैं अकेली, बाबा और मैं और कोई नहीं है सूक्ष्म वतन में। बहुत प्यार से बाबा दृष्टि दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि मैंने जो लेटर लिखा बाबा ने पढ़ लिया है। और प्यार से बाबा कुछ बता रहे हैं, उस पत्र के रेस्पॉन्स में आपने जो भी लेटर लिखा बाबा ने पढ़ लिया, और उसके रेस्पॉन्स में बाबा आपको कुछ बता रहे हैं। उसको कैच करने की कोशिश करें, अगर आप बाबा की बातों को समझ पा रहे हैं आप अभी महसूस करते हैं कि बाबा आपके हाथों को यूज करके आपके लिए लेटर लिख रहे हैं। ये लेटर फ्रॉम गॉड, बाबा से आपके लिए वो लेटर, बाबा के सिग्नल्स को आप अगर कैच कर पा रहे हैं, धीरे धीरे आप अपना पेन उठाएंगे और जो बाबा कह रहे हैं उसको लिखना शुरू करें।
प्रभुवाज लिखो कुछ कागज पर।